الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت قرآن کی جلد نمبر 5 سے اور آیات نمبر 7 سے لے کر 20 کی 20 چل رہی ہیں، اور ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا، خلاصہ تفسیر ہم ان کی پڑھ رہے تھے، پیج نمبر 28 کے اوپر ہیں، معرفت قرآن جلد نمبر 5 میں. پچھلی کلاس میں ایک ربط بنا تھا اس ڈرامے کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ایک چل رہا ہے نا، گویا کہ ایک شو چل رہا ہے، ایک پلے چل رہا ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی لائف کا. تو اس کے اندر ہم نے یہ بات کری تھی کہ یہ جو بیٹے تھے ان کے، یعقوب علیہ السلام کے، تو یہ مومنین تھے، ایمان والے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اپنے باپ کو تو مانتے تھے لیکن اپنے باپ کو پورا نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نا. اپنے باپ کو نبی مانتے تھے جبھی تو مسلمان تھے، اگر نبی نہ مانتے تو مسلمان کہاں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پورا نہیں مانتے تھے، بس کچھ نقص کے ساتھ مانتے تھے اور کہتے تھے انا ابانا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے، کہ نبی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سری گمراہی میں بھی ہیں. عجیب، ٹھیک ہے نا، نبی بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. تو جب اس قسم کی انہوں نے حرکتیں کریں، بہت ہی بری، یعنی حد درجے، یعنی وقت کے نبی کی اس طرح سے انہوں نے ناقدری کری، تو پھر ان کے ساتھ جو عبرت والا معاملہ ہوا وہ سب ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کے سامنے جو اساجز نے یہ آیت تلاوت کری، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک اور عجیب نقطہ کہ جھوٹی جھوٹا خون لگا کر کے یہ اپنے باپ کے پاس کرتا لے آئے یوسف علیہ السلام کا، اور اتنی 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 ان کی عقل میں بات نہیں آئی کہ اگر بھیڑیا حملہ کرتا ہے تو بھائی کرتا پھٹا تو ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو کرتے کو پھاڑ ہی دیتے، کچھ کاٹ واٹ دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی ان کی عقل میں بات نہیں آئی، تو اس کو کہتے ہیں عقل پہ پٹی پڑ جانا، ٹھیک ہے. تو ان کے باپ جو ہے نا یوسف علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام، انہوں نے ان کی ڈائیگنوسس بھی کر دی فوراً ہی، ان کی ڈائیگنوسس، ٹھیک ہے، کہ جو اس حد درجے تم بے وقوفی کا شکار ہو چکے ہو نا، تو اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، ٹھیک ہے، کہ تمہارے نفسوں نے جو ہے نا وہ تمہارے جی میں ایک بات بنا دی ہے، ایک معاملہ بنا دیا ہے تمہارے نفس نے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، نفس جو ہے نا یہ سب سے گھٹیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، سب سے گھٹیا مخلوق جو ہے نا وہ نفس ہے. کس طرح سے، کہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کرتی، اللہ کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کرتی، اور یہ نہیں کہتی کہ انا ربکم الاعلیٰ، حتیٰ کہ شیطان بھی جو ہے نا وہ انا ربکم الاعلیٰ نہیں کہتا. صرف اور صرف ایک انسان کا نفس ہے جو کہ اتنا بے وقوف ہے، اتنا گرا پڑا ہے، اتنا گھٹیا ہے کہ وہ انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو شخص بھی، جو انسان بھی اپنے نفس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے نا، تو اس کا نفس اس کو پھر ایسے ہی گراتا ہے، ایسے ہی گراتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، کیا فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے نا پھر ایک تماشا بنا دیا تمہارے لیے، ٹھیک ہے. لیکن فصبر جمیل، میں تو اپنے نفس کا مارا ہوا نہیں ہوں، मैं अपने नफ्स का मारा हुआ नहीं हूं, ठीक है ना। तू अगर अपना ना बन, मेरा तो बन, नहीं, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, ठीक है ना। वो क्या अल्लामा इकबाल साहब कह गए थे कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन, जो क्या है वो, तू झुका जो नफ्स के आगे। उन्होंने तो कहा था गैर के आगे, लेकिन हमारे मशाइख ने उसको थोड़ा सा तब्दील किया और फरमाया कि तू झुका जो नफ्स के आगे, न तन तेरा न मन, तू किसी काबिल नहीं रहता उसके बाद। अगर नफ्स के आगे तू झुक जाता है ना, तो ये नफ्स तुझे कहीं का नहीं छोड़ता, न तन तेरा रहता है, ना फिजिकल दुनिया तेरी रहती है, ना मन तेरा रहता है, ना रूहानी दुनिया तेरी रहती है। तू हर चीज से हाथ धो बैठता है, और ऐसा जो है ना, वो तुम्हारी अकल के ऊपर पट्टी पड़ जाती है कि तुम ऐसी हरकतें करते हो, और ये भी नहीं सोचते कि भाई कमीज फाड़ करके ले आते, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो मैं तो सब्र जमील करूंगा, सही है। तो अब इसके ऊपर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर बयानुल कुरआन में इसका तर्जुमा ऐसे किया, जो कि दरअसल खुलासा तफसीर वही है बयानुल कुरआन। तो उन्होंने फरमाया कि सो मैं सब्र ही करूंगा, सब्रुन जमील, मैं सब्र ही करूंगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा, ठीक है। यानी ऐसा सब्र नहीं करूंगा कि चुप तो हो गया, रोया धोया तो नहीं, लेकिन शिकायतें करता, क्यों हुआ मेरे साथ ये, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता तो क्या हो, अच्छा होता, ठीक है ना। वाई मी, कहते हैं ना जी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, इस किस्म की शिकायतें जो है ना, वो मैं नहीं करूंगा, तो मैं प्योर सब्र करूंगा और खूबसूरत सब्र करूंगा। तो फरमाया कि सब्र जमील की ये तफसीर कि इसके साथ कोई हर्फ शिकायत ना हो, तिबरी ने मरफू हदीस के हवाले से बयान की है कि ये होता है सब्र जमील। मरफू हदीस यानी नबी अलैहिस्सलाम तक जिसकी सनद पहुंचती है, तो ऐसी हदीस में नबी अलैहिस्सलाम बकायदा फरमाया है सब्र जमील की तारीफ। और जो बातें तुम बनाते हो उनमें अल्लाह ही मदद करेगा, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, ठीक है, कि इस वक्त मुझे उन पर सबर आ जाए और आइंदा तुम्हारा झूठ खुल जाए। यानी मुझे सबर भी अल्लाह की मदद ही से मिलेगा, और तुम्हारा झूठ भी जो है ना, वो भी अल्लाह की मदद से ही, ठीक है ना। इसको कहते हैं सुपुर्दगी, कामिल सुपुर्दगी। एक तो ये भी कह सकते थे कि भाई मतलब तुम्हारा झूठ जो है वो अल्लाह खोलेगा, मैं तो नहीं ये सब सब कुछ कर सकता कि तुम्हारा झूठ जो है वो एक्सपोज करूं, कोई जो है ना वो इन्वेस्टिगेटिव क्या कहते हैं उनको, है सुराग रसान किस्म के लोग हैं, इंस्पेक्टर जमशेद या इंस्पेक्टर कामरान को हायर करूं जो कि सुराग लगाए मेरे बेटे का, नहीं, मेरे पास ये सारे वसाइल नहीं है, ठीक है ना। मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले करता हूं, और अल्लाह ताला के पास सारे वसाइल मौजूद हैं, वही तुम्हारा झूठ खोलेगा, ठीक है। और हत्ता के ना सिर्फ ये कि तुम्हारा झूठ खोलेगा, कि तुम्हारे ऊपर कुदरत मुझे नहीं है, अल्लाह को है, बल्कि मेरे ऊपर भी कुदरत मुझे नहीं है, मुझे तो अपने आप के ऊपर कुदरत नहीं है, मैं तो अपने अपनी मर्जी से सबर भी नहीं कर सकता, मैं तो सबर भी नहीं कर सकता, मुझे सबर भी अल्लाह ही दिलाएगा, ठीक है ना। ये जो कैफियत है ना, और ये जो थॉट है, ये जो सोच है, ये हर एक को नसीब नहीं होती, ये हर एक को नसीब नहीं होती। बहुत यानी जो वाकई बंदगी इख्तियार करते हैं ना, सही मानों में बंदगी इख्तियार करते हैं, सिर्फ वो ऐसे सोचते हैं, वरना नेकी तकवा, बज़ाहिर नेकी तकवा वाली जिंदगी तो गुजार भी लेते हैं, लेकिन ऐसे आजजी ये मुमकिन नहीं है। इस वजह से ना हम बहुत अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं, जिसका कि हमें खुद अंदाजा नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे ना अपने इखलास के ऊपर हमें बड़ा एतबार होता है कि हमने जो है ना वो इखलास के साथ किया जो भी किया, ठीक है, और हम अपने इखलास के बारे में बड़े दावेदार होते हैं, बड़ा दावा कर रहे होते हैं अपने नेकियों के बारे में और अपने, अच्छा, आमाल के बारे में दावा करना तो जरा छोटी हरकत लगती है ना, कि मैंने ये बड़ा अमल कर लिया, मैंने वो बड़ा बड़ा अमल कर लिया, ये जरा छोटे छोटी कैटेगरी है। इससे बड़ी कैटेगरी क्या होती है कि अपनी कैफियत के बारे में दावा करना, ठीक है ना, कि मैंने तो जो किया इखलास के साथ किया, मैं मुझे तो इखलास नसीब है, ठीक है ना। हालांकि हकीकत यह है कि हमें इखलास का अलिफ बे भी नहीं पता होता, हमें मालूम ही नहीं होता कि इखलास चीज क्या है, और हम समझ रहे होते हैं कि हम इखलास के साथ काम कर रहे हैं। हमारे हजरत का एक वाक्य आपने सुना होगा, ऐसा जिसे भी सुना होगा, शायद हजरत से भी किसी ने सुना हो डायरेक्टली, कि गाड़ी में कहीं जा रहे थे, कुछ साथी साथ थे, तो उनमें से एक साहब जो है ना वो शुरू हो गए अपना, जी हम जो करते हैं वो तो इखलास के साथ ही करते हैं, हमने तो बस सब कुछ इखलास के साथ किया, और इखलास इखलास इखलास, ठीक है। तो हजरत जी के जो एक काफी बिल्कुल शुरू के खलीफा हैं हजरत प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब नक्शबंदी दामोदरकातुम, ठीक है, तो उनसे ना हजरत ने जरा ये, अच्छा उन्होंने ये वाकया बयान किया असल में, कि हजरत ने ना जरा हल्की आवाज में ये कहा कि हमें तो अपने इखलास के ऊपर भी शुभा रहता है, इखलास पर भी शुभा है, पता नहीं हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना इखलास के साथ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इखलास के साथ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हकीकत तो ये है, और दावा करवा लो, जी मैं तो बस जो किया वो बस अल्लाह के लिए किया, और जो है ना मैं तो बस अपने आप को कुछ नहीं समझता, और मैं भाई नफ्स जो है ना ये बड़ा खबीस है, नफ्स बड़ा खबीस है, और ये शैतान जो है ना ये बहुत बहुत ही ज्यादा धोखेबाज है, बहुत ज्यादा धोखेबाज है, ठीक है, तो हम दावे भी नहीं कर सकते अपने अमाल के बारे में, क्या हम अपने कैफियत के बारे में, हम अपने सब्र के बारे में दावा नहीं कर सकते, हम शुक्र की जी मैं तो बड़ा शुक्र करता हूँ, मैं तो बड़ा सब्र करता हूँ, नहीं, ठीक है ना, इस दावा तो दावा जो है ना ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, तज़किया नफ्स के रास्ते के ऊपर और इखला और ये तकवा के रास्ते के ऊपर, इखलास के रास्ते के ऊपर दावा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हमें करना ये चाहिए कि हम जो है ना अपने अल्फाज को एक दफा खुद से सुनने की कोशिश किया करें, ठीक है ना, और लिखने में ये फायदा ये होता है कि सेंड का बटन दबाने से पहले हम उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, लिखने में फायदा होता है, बोलने में तो फिर वो निकल गया सो निकल गया, अब उसको जो है वो आप सुनते रहें, ठीक है, रिकॉर्ड करके सुनते रहें, लेकिन वो तो निकल गया ना, लेकिन लिखने में ये फायदा होता है कि सेंड में अभी थोड़ा टाइम है, भाई दोबारा से पढ़ लें कि मैं लिख क्या रहा हूं, मैं लिख क्या रहा हूं, क्या मेरा जो मेरी जो तहरीर है वो मेरी जात के बारे में दावों से भरपूर तो नहीं है, दावों से पुर तो नहीं है मेरी मेरी जात के बारे में, ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म का सिलसिला स्टार्ट करें ना तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहरहाल तो ये तो फिर अल्लाह के नबी थे, और हम तो नहीं है अल्लाह के नबी, लेकिन कम से कम सीखना तो हमें इन्हीं लोगों से है ना, यही हमारे मॉडल्स हैं, इनसे हमें सीखना तो चाहिए, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए, तो सब्र जमील की ये तफसीर कि उसके साथ कोई हर्फ शिकायत ना हो तिबरी ने, अच्छा ये तो हो गया, तो कहते हैं कि जी अल्लाह ही मदद करेगा कि इस वक्त मुझे इन पर सब्र आ जाए और आइंदा तुम्हारा झूठ खुल जाए, बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब्र करके बैठे रहे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ये किस्सा हुआ कि इत्तेफाक से उधर एक काफिला आ निकला जो मिस्र को जा रहा था, और उन्होंने अपना आदमी पानी लाने के वास्ते यहाँ कुएं पर भेजा, और उसने अपना डोल डाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने डोल को पकड़ लिया, जब डोल बाहर आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो खुश होकर कहने लगा, बड़ी खुशी की बात है या बुशरा हादा गुलाम, है ना, बड़ी खुशी की बात है कि ये तो बड़ा अच्छा लड़का निकल आया, काफले वालों को खबर होती तो वो भी खुश, खबर हुई तो वो भी खुश हुए, ठीक है, ये जो तो ब्रैकेट्स में होता है ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, तो वो भी खुश हुए और उनको माल तिजारत करार देकर इस ख्याल से छुपा लिया कि कोई दावेदार ना खड़ा हो जाए, ठीक है, यानी ये जो दो बंदे गए थे, आगे लिखा हुआ है मारूफ मसाइल के अंदर कि दो बंदों को भेजा था उन्होंने पानी लाने के लिए, तो इन्होंने जो है ना वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया, खुशी का ऐलान किया, और फिर जो है ना वो अपने काफले में ले गए और काफले वालों को भी बता दिया कि हाँ भी हमें ये गुलाम मिल गया, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काफले वालों से भी छुपाने की कोशिश करें, ठीक है, तो सारे काफले वालों ने फिर जो है ना वो यानी आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया कि जी इनको छुपा देते हैं कहीं कोई दावेदार ना खड़ा हो जाए, तो फिर उसको मिस्र ले जाकर बड़ी कीमत पर फरोख्त करेंगे, यानी काफिला जो तिजारत का सामान ले जा रहा होता है आगे फरोख्त करने के लिए तो उसके अंदर इनको ऐड कर लिया, ठीक है, और अल्लाह को उन सबकी कारगुजारियां मालूम थी, इधर वो भाई भी आसपास लगे रहते और कुएं में यूसुफ की खबरगीरी करते, कुछ खाना भी पहुंचाते जिससे मकसद ये था कि ये हलाक भी ना हो और कोई आकर उन्हें किसी दूसरे मुल्क में ले जाए, ठीक है, क्योंकि इनकी बाहमी मुशावरत से जो है ना वो कत्ल करने का मंसूबा इन्होंने यानी छोड़ दिया था, पहले तो कत्ल करना चाहते थे, लेकिन एक भाई के कहने के ऊपर इन्होंने जब एग्रीमेंट कर लिया तो अब नाउ दे वर मेकिंग श्योर, अब ये इसकी यकीन दहानी कर रहे थे कि कहीं मर ना जाए भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना ये डायरेक्ट तो हमने कत्ल नहीं किया लेकिन हमारी वजह से जो है वो जान से ना चले जाए, तो फिर बड़ा ख्याल रखते थे, खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं। और ठीक है, इस रोज जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में ना देखा और पास एक काफिला पड़ा देखा तो तलाश करते हुए वहां पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता लग गया तो काफिले वालों से कहा कि हमारा गुलाम है, भाग कर आ गया था और अब हम उसको रखना नहीं चाहते। ठीक है, तो जब किसी को पता होता है कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर तो फिर तो वो उसको सर्च कर ही देता है। ठीक है, तो इन्होंने काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपाया तो था लेकिन ऐसा नहीं छुपाया था कि कोई गड़ा खोद करके उसके अंदर उनको डाल दिया था, वहीं पर काफले वालों के साथ ही उठते बैठते होंगे ना। तो भाई जब वहां पे पहुंचे और उनको अंदाजा तो था कि भाई हमने तो इधर ही डाला था यूसुफ को, तो जाहिर है काफले वालों ने निकाला है, तो फिर इनके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था। और जब तलाश कर लिया तो फिर उसके बाद जो है ना वो थे भी माशाल्लाह, कोई दो चार तो थे नहीं खाली, 10 के 10 थे। तो काफले वाले भी जरा उनसे यानी बहस मुबाहसा करने के बजाय बात माननी पड़ी उनको। तो काफले वालों का जो प्लान था ना कि किसी को पता ना चले, ये प्लान जो है वो उनका फेल हो गया। लेकिन उन्होंने और काम आसान कर दिया कि भाई हम इसको रखना नहीं चाहते, और ये बात बनाकर उनको बहुत ही कम कीमत पर काफले वालों के हाथों बेच डाला। ठीक है, यानी शराहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा के गिनती के चंद दिरहम के बदले में उनको बेच डाला। और वजह ये थी कि ये लोग कुछ उनके कदरदान तो थे ही नहीं, यानी इनका जो मकसद था ना वो पैसे कमाना तो था नहीं, ये बड़े फोकस किस्म के लोग थे। इनका प्लान था कि बस यूसुफ को यहाँ से हमने, यानी देखिए सिफात, इनको सिफात कहते हैं, नबी के बेटे थे ना, ठीक है ना, आखिर को नबी के बेटे थे, नबी के घर के अंदर पले बड़े थे, तो एक बड़ी गलती का शिकार तो ये हो गए। लेकिन देखें डी फोकस नहीं है, पहले उन्होंने प्लान किया मारने का, ठीक है, लेकिन मशवरे के अंदर जब एक दफा तय पा गया कि नहीं मारना है तो अब दे वर फोकस्ड के नहीं मारना है और मरने भी नहीं देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब उनके सामने एक ऑप्शन आया कि जी ये काफले वालों के हाथ बेच दें और बड़ी रकम काफले वालों से हथिया लें, नहीं, दे वर स्टिल फोकस्ड, जो इनका मकसद था, जो इनका एग्रीमेंट था, करारदाद इनकी थी कि बस इसको यूसुफ को जो है ना यहाँ से दूर भगवाना है, दूर पहुंचवाना है। ठीक है, तो उसको इन्होंने नहीं छोड़ा, और बस चंद दराहिम के बदले ताकि उनको भी ना पता चले कि हाँ भाई ये तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है ना, बस बेचो बेचो खत्म करो। ठीक है, तो ये नहीं हुआ कि दरमियान से जो है ना वो अपना फोकस जो है वो चेंज कर लिया, डी फोकस्ड हो गए, कुछ और करना शुरू कर दिया साथ साथ। ठीक है, तो ये उनके कदरदान तो थे ही नहीं कि उनको उमदा माल समझकर बड़ी कीमत से बेचते, बल्कि उनका मकसद तो उनको यहां से हटाना था, तो दे स्टक टू देयर पर्पस। ठीक है भाई, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, हम मारूफ मसाइल पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मारूफ मसाइल जो कि हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद से अपनी तहकीक वगैरह करके और अपने समझ के मुताबिक बहुत सारी बातें इसके अंदर डाली हैं, तो उसमें हजरत लिखते हैं, अच्छा इन्होंने कुछ लिखा है कि जिस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम ने सब कुछ जानते हुए भी उन लोगों को कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया, तो हमें भी इस तरह के मामलों में ऐसे ही करना चाहिए, या वो कौन से मौके हैं या कौन कौन सी गलती हो जाने में हमें बदला लेना चाहिए या सजा देना चाहिए, या कम से कम उनको गलती का एहसास तो दिलाया जाए। देखिए कौन कौन से ऐसे, कोई शरी लिस्ट नहीं है कोई कि जी इसमें उनको दिलाया जाए उसमें उनको ना दिलाया जाए, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के नबी थे और जाहिर है वक्त के नबी अगर मुज्तहिद के दर्जे पर फायज नहीं है तो और कौन होगा। ठीक है, तो उन्होंने इज्तिहाद किया कि भाई इस मौके पर ना मुझे उनके साथ कैसा मामला करना चाहिए, फिर नबी के साथ वही का सिलसिला भी मौजूद होता है। ठीक है, तो उनको वही से ये बात भी बतला दी गई होगी कि भाई अल्लाह ताला का ये तकवीनी फैसला है, ठीक है, तो अब इसको जाने दो और तुम सबर ही करो। ठीक है, तो उन्होंने गलती का एहसास तो उनको दिला दिया, ये जो बल सब बदत रकुम अनफुसुकुम के अल्फाज हैं तो ये गलती का एहसास ही तो दिला रहे हैं कि तुम्हारे नफ्सों ने जो है वो एक मामला घड़ लिया अपनी तरफ से। ठीक है, ये तो नहीं कहा कि अच्छा अच्छा तुम जो कह रहे हो सच्ची कहते होगे, ये तो नहीं कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, तो गलती का तो एहसास दिला दिया उनको, ठीक है। अब हमें जो है वो किस मौके में कैसे करना चाहिए, तो भाई हमें भी इज्तिहाद करना चाहिए, इमाम अबू हनीफा वाला इज्तिहाद नहीं कि जी जो है वो हाथ ऊपर बांधना है कि हाथ नीचे बांधना है, नहीं ये वाला इज्तिहाद नहीं, जिस तरह से पहले भी हम कई दफा बात कर चुके हैं कि जिस तरह से घर की औरत को जो है ना वो किचन में इज्तिहाद करना होता है कि कौन सी वाली सालन पकाना जो है ना वो मेरे लिए अच्छा है, कि मेरे शौहर को पसंद आएगा, मेरे बच्चों को पसंद आएगा, और जो है वो सेहत के हिसाब से भी जो है वो शौहर बच्चों के लिए अच्छा होगा, तो वो इज्तिहाद करती है कि मैं कौन सा सालन पकाना है। उसी तरीके से हर इंसान ने अपनी जिंदगी में इज्तिहाद करना होता है मौके महल को देख करके, जब उसके पास कोई सरी हुक्म ऊपर से ना आया हुआ हो, कोई सरी हुक्म अगर ऊपर से आया हुआ होता है तो फिर इज्तिहाद नहीं करना होता। मसलन ये कि शौहर साहब ने, वो तो जमाने तो थे, अभी कुछ जगहों पर रहेंगे जब शौहर हुक्म देता था बीवी को, लेकिन हम पुराने जमाने की बात कर लेते हैं कि जब शौहर ने अगर फोन करके हुक्म दे दिया कि मुझे तो आज जो है ना वो कड़ी खानी है, जब कड़ी का हुक्म आ गया, बिरयानी का हुक्म आ गया, ठीक है, अब बेगम साहिबा इश्तिहाद नहीं कर सकती, ठीक है ना, तो सराहत मौजूद है, अब इश्तिहाद कैसा। तो हमारा भी यही मामला है कि जब सरी हुक्म हमारे ऊपर मौजूद होता है तो फिर तो नहीं, लेकिन अदरवाइज जो है ना वो इश्तिहाद करना होता है कि हाउ शुड आई एक्ट और रिएक्ट इन अ सिचुएशन, ठीक है। इसके लिए जो है वो अकल को जरा जज्बात से अन इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है ना, जो अकल जो है वो जज्बात से एकदम वो हो गई है ना, मूव हो गई हो जज्बात से, ठीक है, वो अकल इज्तिहाद नहीं कर सकती, ठीक है। तो अकल सलामत हो, नियत जो है वो अल्लाह की रजा हो, और जो इल्म उस मामले के अंदर चाहिए है इज्तिहाद करने के लिए वो वाला इल्म मौजूद हो, ठीक है ना, तो ये चीजें जब होती हैं तो फिर हम इज्तिहाद कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद नफ्स और शैतान को फॉलो करते हैं अपने मामलात के अंदर, और फिर मामला हमारा खराब हो जाता है। मारूफ मसाइल में हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरह यूसुफ की मजकूरा बाला आयतों में से पहली आयत में इस पर मुतनब्बह किया गया है कि इस सूरत में आने वाले किस्से यूसुफ अलैहिस्सलाम को महज एक किस्सा ना समझो, ठीक है, बल्कि इसमें सवाल करने वालों और तहकीक करने वालों के लिए अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की बड़ी निशान निशानियां और हिदायतें हैं, ठीक है। तो पढ़ चुके हैं सब कुछ हम तर्जुमे में भी, थोड़ा सा तफसीर में भी। इससे मुराद ये हो सकता है कि जिन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश के लिए ये किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, उनके लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं, साइलीन है ना वो सवाल करने वाले, ठीक है, तो उनके लिए बड़ी निशानियां हैं। रिवायत यह है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा में पहुंची, तो वहां की यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज्जमा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करें। इसीलिए ये सवाल एक मुबहम अंदाज में इस तरह किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के सच्चे नबी हैं तो ये बतलाइए कि वो कौन सा पैगंबर है जिसका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उसके गम में रोते रोते नाबीना हो गए, ठीक है। तो यहूदियों ने जो सवाल का सिलसिला था ना वो एक मौके पर खुद अपने बंदे भेजे सवाल करने के लिए, खुद टेस्ट करने के लिए, ठीक है, और दूसरा मौका था कि जिसके ऊपर मुशरिकीन मक्का मदीना मुनव्वरा गए थे और यहूदियों से उन्होंने कहा था कि भाई तुम अहले किताब हो और हमारे इलाके में, हमारे शहर में एक एक दावे नबूवत आ गया है, दाइये नबूवत आ गया है, और हमें नहीं पता चल रहा कि वो वाकई सच्चा है कि झूठा है, तो तुम हमें कोई सवाल बताओ, कुछ कुछ हमें बताओ, ठीक है, जैसे जिससे कि हम वेरीफाई कर सकें कि वो वाकई नबी है कि नहीं। तो उन्होंने फिर तीन सवाल दिए थे, वो तीन सवाल अलग सवाल थे, ठीक है, कि असहाबे कहफ कौन है और ज़ुल्करनैन कौन है और रूह क्या चीज़ होती है, ये तीन सवाल दिए थे, लेकिन ये मुशरिकीन मक्का के हवाले किए थे, मुशरिकीन मक्का ने आकर के सवाल नबी अलैहि सलाम के सामने प्रेजेंट किए थे। तो ये वाकया जाहिर सी बात है कि अलग वाकया है, ये वाकया यहूदियों ने इसलिए इंतखाब किया था कि ना इसकी कोई आम शोहरत थी, ना मक्का मुकरमा में कोई इस वाकये से वाकिफ था, और उस वक्त मक्का मुकरमा में अहले किताब में से भी कोई ना था जिससे बहवाले तौरात इंजील इस किस्से का कोई जुज मालूम हो सकता, जैसे वरका बिन नौफिल वो इंतकाल फरमा चुके थे बेसत से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था, बल्कि मतलब बस वो इकरा बिस्मिल रब्बिकल अज़ीज़ वाले वाक़े के बाद उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो इस वक्त तो ये मौजूद नहीं थे, ये तो बाद का मामला है, और कोई दूसरे भी इस वक्त अहले किताब के आलम मौजूद नहीं होंगे। उनके इस सवाल पर ही पूरी सूरह यूसुफ, जिसमें हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा मजकूर है, और इतनी तफसील से मजकूर है कि तौरात इंजील में भी इतनी तफसील नहीं, इसलिए इसका बयान करना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला हुआ मौजजा था, ठीक है। तो इन लोगों के पास जो निशानियां मौजूद थी, तो ये तो इतनी तवातुर के साथ, ठीक है, यानी अहले किताब के वाकयात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले भी कितनी निशानियां जो है उनको मिली हुई थी, और बेसत के बाद भी कितनी निशानियां, फिर मदीना मुनव्वरा आए तो वहां पर कितनी निशानियों का तस्करा है ना, अब्दुल्ला बिन सलाम, नजरतान के इस्लाम नामे, ये सब यहूदियों के साथ। और फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम छठी हिजरी में वाकया हुदैबिया के बाद वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं, और फिर जो बादशाहों को खतूत लिखते हैं, जो कि हम आजकल अपनी सीरत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास के अंदर जिसका तस्करा अब मुकम्मल कर लिया पढ़ के हमने, ठीक है। तो वो जो बादशाहों को खतूत लिखे हैं, उनमें से सारे बादशाह जो थे वो, यानी यहूदी कोई बादशाह नहीं था, क्योंकि यहूदियों के पास तो बादशाह कभी थी नहीं, ठीक है। तो या तो वो मजूसी बादशाह ईरान का और बहरीन का, ठीक है, या जो है वो ईसाई बादशाह जैसे हबशा का नजाशी, और जो है वो मकूफस मिस्र का, और रोम का जो है वो कैसर, ठीक है। तो अब इनके वाकयात के अंदर जो हमने पढ़ा, तो इनके पास यानी ईसाइयों के पास सारी निशानियां मौजूद थी, ठीक है। तो ईसाई अवाम तो होती है जाहिल, ठीक है, और यहूदी अवाम भी होती होगी थोड़ी बहुत जाहिल, लेकिन यहूदियों में उलमा की का तनासुब ज्यादा है, तनासुब प्रोपोर्शन जो है ना वो उलमा का, ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ यहूद में उनका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। ईसाइयों के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही जाहिल हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता, और पोप को भी और प्रीस्ट को भी और किसी को कुछ नहीं पता, नहीं, उनके यहाँ भी पोप एंड प्रीस्ट को जो है वो बहुत कुछ पता है, बल्कि पूरी तफसील पता थी उन लोगों को भी, लेकिन उनकी पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज्यादा है, ईसाइयत की पॉपुलेशन आज भी अगर आप सारी डिनोमिनेशन को इकट्ठा कर लें दुनिया के अंदर, तो ईसाइयत की तादाद जो है वो मुसलमानों से भी ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ना उनके जो जो प्रीस्ट और इल्म रखने वाले हैं वो प्रोपोर्शनली बहुत कम नजर आते हैं। तो उस जमाने के तो उनके बादशाह जो है वो बड़े बड़े उलमा होते थे, नजाशी भी आलिम दीन था, मकूफस भी जो है वो अच्छा खासा आलिम था, और जो है वो कैसर रोम तो बहुत बड़ा आलिम था। तो ये वाकया जो है ना, ये यानी उन लोगों को तो पता था, लेकिन मुशरिकीन मक्का को ये सारी तफसीलात बिल्कुल भी पता नहीं था। इस आयत के ये मानी भी हो सकते हैं कि कतअ नजर सवाल यहूद के खुद ये वाकया ऐसे उमूर पर मुश्तमिल है जिसमें अल्लाह ताला की कुदरत कामिला की बड़ी निशानियां, और तहकीक करने वालों के लिए बड़ी हिदायतें और अहकाम व मसाइल मौजूद हैं, कि जिस बच्चे को भाइयों ने हलाकत के गार में डाल दिया था, अल्लाह ताला की कुदरत ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तसव्वुर नहीं कर सकते ना कि एक बच्चा, यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जो है वो उस वक्त बज़ाहिर लगता है कि यानी 7-8 साल या ज्यादा 10 साल से तो कम ही, आगे शायद लिखा हुआ भी है, यानी बड़ा आदमी आप किसी अंधेरे गार के अंदर, वहां पे कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग वगैरह तो नहीं थी ना, और एक दिन से तो ज्यादा उन्होंने यानी रात गुजारी थी वहां पर, और पता नहीं कितनी रातें गुजारी थी, तभी तो खाने पीने का इंतजाम इनको करना पड़ा था। तो यानी क्या अंधेरा गार, मौत का गार जब इसको देखा ना, हलाकत का गार, अल्लाह ताला की कुदरत ने उसको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, और किस तरह उसकी हिफाजत की, और अपने खास बंदों को अपने अहकाम की पाबंदी का किस कदर गहरा रंग अता फरमाया, कि नौजवानी के जमाने में तायुश का बेहतरीन मौका मिलता है, मगर वो खुदा ताला के खौफ से नफ्स की ख्वाहिशात पर कैसा काबू पाते हैं कि साफ इस बला से निकल जाते हैं। और ये कि जो शख्स नेकी और तकवा इख्तियार करे, अल्लाह ताला उसको अपने मुखालफीन के मुकाबले में कैसी इज्जत देते हैं, ठीक है। नेकी और तकवा वाली जिंदगी ये शर्त है, जो भी करता है ना अल्लाह ताला उसको इज्जतें देते हैं, और ये इज्जतों का वादा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। तो नेकी तकवा इख्तियार करने का एक लाजमी जुज ये है कि कुरान करीम के साथ रिश्ता मजबूत हो, कि वहां पे जो वादे हैं ना, वो वादे हमारी निगाहों में हों और हम अपनी जो रूहानी गजा है कि इन वादों का की याद दहानियां हमें कुरान मजीद से मिलती रहे, ये भी रूहानी गजा है, ठीक है, कि याद दहानियां हमें कुरान मजीद से मिलती रहे और हम इन याद दहानियों के ऊपर एतमाद करते हों। इस एतमाद के नतीजे में जो रूहानी रजा वहां से फ्लो होती है ना, एतमाद के नतीजे में, ठीक है, ये इंसान को फिर चला के रखती है। और फिर अल्लाह ताला के जहां पे भी फैसला होता है, वहां पे रूहानी रजा के बाद फिर जिस्मानी रजा भी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, है ना, जो फितना आए, जो परेशानी आए, जो मुसीबत आए, लेकिन जिसका ताल्लुक कुरान मजीद के साथ है और रूहानी गिज़ा का सिलसिला चल रहा है ना, ये चीजें फिर उसको नहीं हिला सकती, ठीक है। तो फिर मुखालफिन के मुकाबले में कैसी इज्जत देते हैं और मुखालफिन को उसके कदमों में ना डालते हैं, ये सब इबरतें और नसीहतें और कुदरत इलाहिया की अजीम निशानियां हैं जो हर तहकीक करने वाले और गौर करने वाले को मालूम हो सकती है, ठीक है। अल्लाह के कलाम के ऊपर तहकीक करने वाला, अल्लाह ताला ने अपने आप को बहुत मुख्तलिफ जरियों से, जराए से और तरीकों से हमारे सामने यानी निशानियां रखी हैं कि जिनसे हम अल्लाह की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह ताला की निशानी है, अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करती है। दरख्त, पहाड़, ऊंट, राइट, जमीन, ये सारी की सारी अल्लाह की निशानी है। बादल, हत्ता के हमारे अपने नफ्स, ये अल्लाह ताला की निशानी है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा, और हमारा जो है ये लताइफ का सिस्टम, रूहानी सिस्टम, ये सब का सब अल्लाह ताला की निशानियां तो हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का अपना कलाम है, ये तो अल्लाह ताला की मखलूक भी नहीं है, ये मखलूक से अफजल चीज है क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत है, ठीक है ना। तो कलाम के जरिए से जिस यानी जितना हमें अल्लाह ताला से वाकफियत होती है ना, तो उतनी अल्लाह ताला की मखलूक के जरिए से वाकफियत नहीं होती, ठीक है। तो कलाम हमारे पास मौजूद, हमारे सामने मौजूद, हमारे घर के अंदर मौजूद, हत्ता कि बहुत से हम ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको उसको रटा हुआ भी है, याद भी किया हुआ है, सीनों में भी महफूज होता है, लेकिन उस कलाम के अंदर जो हमारे लिए हिदायात हैं, जो अहकामात हैं, उनकी भी हमने हिफाजत करी हुई है, या खाली जो है वो किताबी शक्ल में उसकी हिफाजत करके अपने घर के अंदर रखा हुआ है, या अल्फाज की शक्ल में हिफाजत जो है वो हम उसकी रोजाना तिलावत करते हैं, सवाब जरूर कमाते हैं, या अपने बच्चों को जो है वो हिफ्ज के ऊपर लगा दिया, उन्होंने अल्फाज को जो है वो अपने सीनों के अंदर महफूज कर लिया, लेकिन हिदायात का क्या किया हमने, अहकामात का हमने क्या किया, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने हमारे पास वो भी पहुंचाए हुए थे, ये तफसीर मारफुल कुरान, ये क्या है, ये इन हिदायात की हमारे जुबान में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और इन अहकाम की हमारे जुबान में एक्सप्लेनेशन है, कितना अल्लाह ताला ने तो सब कुछ कर दिया ना, कोई हुज्जत यानी कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा अल्लाह ताला, सब कुछ ही तो कर छोड़ा, तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो फरमाते हैं कि जी इस आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र है, उनका वाकया ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत 12 लड़के थे, उनमें से हर लड़का साहिब औलाद हुआ, सबके खानदान फैले, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लकब इसराइल था, इसलिए ये सब 12 खानदान बनी इसराइल कहलाए, ठीक है, बनी इसराइल। कभी कभी ना आप में से कोई पूछ लेता है, पूछने वाले अभी किसी ने पूछा था, पता नहीं वो क्लास में है कि नहीं है, तो अगर है तो सुन लें वो भी, ठीक है, कि हमें जो है ना वो अपने घर में तालीम किस चीज़ की करनी चाहिए, ठीक है। तो यानी लोग कहते हैं कि भाई हम तालीम करें, तालीम जैसे तबलीग जमात वाले तालीम करते हैं ना, ठीक है, तो एक तो हमारे लिए तालीम करने का ऑप्शन हमारे बुजुर्गों से मिला है, फजाइल आमाल की तालीम, ठीक है ना, जो कि तबलीगी भाई जो हैं वो और बहनें जो हैं वो बड़ी पाबंदी के साथ फजाइल आमाल की तालीम से अग्रे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये तालीम करने के लिए फजाइल आमाल के अलावा भी चीजें हैं ना, ठीक है, अगर आप फजाइल आमाल पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ चुके हैं और मामला जो है वो आप ये देख रहे हैं कि भाई फजाइल का मसला नहीं है कि लोग फजाइल की तरफ नहीं लपक रहे, बल्कि मसला जो है ना वो इस वक्त रजाइल का शुरू हो चुका है, है ना, ईमान जो है वो इंसान लोगों का खत्म हो रहा है, और जो है वो यानी बिल्कुल ही जो है ना वो शक व शुबे के अंदर लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, शक व शुबे के अंदर। तो उस वक्त जो है ना फिर फजाइल अमाल के जरा हट के देखने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि फजाइल जो है ना ये मानने वालों के लिए होते हैं, जो शक व शुबे के अंदर नहीं पड़े हुए वो फिर मजीद इबादतें करें, मजीद जो है वो नफलें पढ़ें, मजीद मुस्तहबात के ऊपर अमल करें, और उनको जो है वो सवाब, ठीक है। लेकिन अगर हमारे खानदान में और हमारे गिरदो पेश के अंदर मसला जो है वो अकायद का पड़ गया, तो फिर आप फजाइल की तालीम करके क्या करेंगे? फिर तो उसके बाद लोग जो है वो यानी एक तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा उनके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मौके पर वैसे तो अपने मशाइख से मशवरा कर लेना चाहिए और उनको अपने हालात वगैरह बता करके मशवरा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक अगर आप एक जनरल डायरेक्शन या जनरल एडवाइस देना चाहें ना कि किस चीज की तालीम करनी चाहिए, ठीक है, तो मारफुल कुरान से बेहतर इस वक्त जो है ना इस फकीर की नजरों में और कोई चीज नहीं बताती, मारफुल कुरान, ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह के कलाम की तफसीर भी है और ये बहुत बड़े वक्त के शेख और बहुत बड़े वक्त के फकीर की मुरतब करदा किताब, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो कुरान, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर ये तो मिलेगी, जिससे कि बहुत सारे मुसलमान जो है वो ज्यादा उनको वैसे भी कि हाँ भी अल्लाह का कलाम पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह के कलाम की तरफ तवज्जो ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो बेशुमार और चीजें हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होती हैं, और इसके जरिए से जो है ना वो एक तो कुरान से जुड़ना नसीब होता है, जिससे कि शुकूक व शुबहात भी हमारे दूर हो सकते हैं, जो जिनको हम यानी इसमें हेल्प आउट करना चाहते हैं, शुकूक व शुबहात का भी इलाज हो सकता है, और जो है वो फिकी मसाइल वगैरह और रूहानी मसाइल वगैरह ये सारे भी इसके अंदर अच्छे से कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ना हमने तो शुरू करी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले बस, लेकिन अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए थी अपने दोस्त अहबाब में वगैरह, बहुत सारे लोग हैं वो रूम शेयर करते हैं, अपार्टमेंट शेयर करते हैं दूसरे साथियों के साथ, तो भाई कौन सी क्या चीज पढ़े, तो कुरान क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, इस आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र हम पढ़ लिया। इन 12 लड़कों में 10 बड़े लड़के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली जौजा जौजा मुहतरमा हजरत लिया बिनते लियान के बतन से थे, ठीक है। उनकी वफात के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने लिया की बहन राहील से निकाह कर लिया। उस जमाने में मतलब हो सकता है राहील औरतों का नाम रखते हो, हमने तो अपने पाकिस्तान में तो जो है वो मर्दों का नाम भी राहील लिखा, बहरहाल उनका नाम राहील था। उनके वतन से दो लड़के यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन पैदा हो, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई सिर्फ बिन्यामीन थे, बाकी 10 भाई अल्लाती यानी बाप शरीक थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील का इंतकाल भी उनके बचपन ही में बिन्यामीन की विलादत के साथ हो गया, यानी बिन्यामीन जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी छोटे थे। बेंजामिन कहते हैं इनको, बिन्यामीन के लफ्ज को बेंजामिन बना दिया उन्होंने अंग्रेजी में। दूसरी आयत में यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को देखा कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गैर मामूली मोहब्बत रखते हैं, जो उनके बड़े भाइयों को हासिल नहीं, इसलिए उन पर हसद हुआ, और ये भी मुमकिन है कि किसी तरह उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी मालूम हो गया हो, जिससे उन्होंने ये महसूस किया हो कि उनकी बड़ी शान होने वाली है, तो इससे भी हसद पैदा हुआ हो, ठीक है, कभी बाद में जाकर के बड़ी शान मिलेगी। तो ऐसा इंसान अंधा हो जाता है कि बजाय इसके कि ये सोचे कि भाई बड़ी शान मिलेगी तो भाई मैं अगर उनकी रिस्पेक्ट करूंगा और उनकी हिफाजत में अपना रोल प्ले करूंगा तो मुझे भी फायदा होगा उनकी बड़ी शान से, ठीक है। लेकिन जब बिल्कुल दूसरी तरफ की एक्सट्रीम में इंसान जाता है ना, तो फिर वो वही बात, अकल बिल्कुल उसके काम नहीं कर रही होती, और वो उल्टा हसद में उबला होकर के ना, पता भी है कि बड़ी शान मिलने वाली है लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम पिछली क्लास में बल्कि बयान में भी और फिर ख्वातीन की क्लास के अंदर भी बात कर चुके हैं कि भाई इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो हमारी जिंदगियों में हो जाती हैं, ये अल्लाह की तरफ से तकवीनी मामलात होते हैं कि भाई घर के अंदर किसी को खूबसूरत बना दिया, माँ बाप की तवज्जो उनकी तरफ हो गई, किसी को जो है ना वो ज्यादा सलाहियत दे दी तो माँ बाप की तवज्जो उसकी तरफ हो गई, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसकी वजह से जो है ना वो दिल के अंदर किसी के बारे में कीना आ जाए, हसद आ जाए, या जो है वो कोई और इस किस्म की रूहानी मर्ज, गुस्से का मर्ज तो ऐसा है जो कि बिल्कुल साफ नजर आता है कि विरासत के अंदर मिलता है। बाप गुस्से वाला तो जी, बेटा या बेटी भी गुस्से वाली है, इस किस्म का, ठीक है। तो ऐसी चीजें तो यानी इंसानों के अंदर बगैर कुछ गलती किए हुए भी आ सकती है ना भाई। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसके अंदर जीन्स के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी आती है नेगेटिव क्वालिटी अपने माँ बाप, तो उसने कौन सा गुनाह किया होता है कि जिसकी सजा में उसको जो है वो ये नेगेटिव चीज मिली है। कहने का मकसद ये कि ऐसी कैफियात इंसानों के दिलों में आ सकती हैं, रूह में आ सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बीमारियों का इलाज रखा है। जिस तरह जिस्मानी बीमारियां बगैर आपको बेहतियाती के भी लग जाती है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने निजाम रखा है इलाज का, तो भाई हम इलाज करवा लेते हैं। ये तो नहीं लेकर के बैठ जाते हैं ना कि अब तो हो गई, अब तो बस मैंने बीमार ही रहना है। तो भाई रूहानी बीमारियों का भी यही हाल है, यही मामला है, ठीक है। तो उसका भी इलाज करने के लिए जो अल्लाह ताला ने असबाब दिए हैं, जैसे इन लोगों को असबाब दिए थे, तो भाई इनको इख्तियार करना चाहिए था, मसला खत्म हो जाता, लेकिन इन्होंने असबाब इख्तियार नहीं किए बल्कि बीमार ही रहना पसंद कर लिया। तो बीमारी तो भाई बढ़ती है और फिर हालात तो वाकयात बीमारी को बढ़ाते हैं और उसको फिर एक्सप्लॉइट करते हैं, इंसान को फिर बड़ा नुकसान पहुंचता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। तो फरमाते हैं कि जी इन्होंने आपस में गुफ्तगू की कि हम ये देखते हैं कि हमारे वालिद को बनिस्बत हमारे यूसुफ बनिस्बत हमारे यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम 10 हैं और उनसे बड़े हैं, घर के काम काज संभालने की कुव्वत रखते हैं और ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते। हमारे वालिद को इसका ख्याल करना और हमसे ज्यादा मोहब्बत करना चाहिए था, मगर उन्होंने खुली हुई बेइंसाफी कर रखी है। हालांकि ये भी सोच सकते थे कि भाई छोटे बच्चे तो क्यूट लगते हैं, सबको ही क्यूट लगते हैं, इनको भी अपने बच्चे, इनके अगर औलादें होंगी तो उनको अपनी औलादें क्यूट नहीं लगती थी, है ना। तो उसी तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम के जो सबसे छोटे बच्चे थे, तो भाई छोटेपन की वजह से भी तवज्जो हो जाती है उस तरफ, लेकिन ये बात नहीं सोच रहे बल्कि रूहानी बीमारी। तो फिर जो है ना वो उल्टी बात ही समझ में आती है, सीधी बात सामने नजर है लेकिन नहीं समझ में आती। भाई दे आर देंगे नहीं है कि भाई सबसे छोटे ही हैं और ये तो अभी अपने पैरों में खड़े भी नहीं हुए, तो जाहिर है बाप की जो तवज्जो उनकी तरफ ज्यादा होगी। बिसाइड्स ऑल दी अदर रीजंस, तो कहा कि जी ये दोनों छोटे बच्चे हैं जो कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे वालिद को ख्याल करना चाहिए, हमसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, मगर उन्होंने खुली हुई बेइंसाफी कर रखी है, इसलिए या तो तुम यूसुफ को कत्ल कर डालो या फिर किसी दूर जमीन में फेंक आओ जहां से वो वापस ना आ सके। ठीक है जी, कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो आप अभी दे सकते हैं, वरना क्लास हम खत्म कर देंगे। ठीक है, चले, कोई सवाल नहीं लगता कि है किसी के पास, तो हम क्लास खत्म करते हैं। आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।